ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स वै रत्नं तु तत् दृष्ट्वा आत्मैश्वर्य अतिशायनं तत् न आद्रियत् अग्निहोत्र्यां स अभिलाष स हयहय। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सह वह कार्तवीर्य अर्जुन वै निसंदेह रत्नम संपत्ति के स्रोत को तो निसंदेह तत् जमदग्नि की कामधेनु दृष्ट्वा देखकर आत्म ऐश्वर्य निजी ऐश्वर्य अतिशायनं अतिशय तत् वा न नहीं आद्रियत् अत्यधिक प्रशंसा की अग्निहोत्रायाम उस गाय में जो अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए अत्यंत लाभदायक थी। स अभिलाषः इच्छुक स हयहयः हयहय वंशी अपने व्यक्तियों सहित। अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। कार्तवीर्य अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतः उसने तथा उसके हय हय जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की, उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। हरे कृष्णा। तो हम लोग इस नवम स्कंद में कथा सुनते आ रहे हैं। पुरुरवा महाराज के वंश के बाद अब इसमें भगवान के एक अवतार परशुराम जी की कथा चल रही है। इस 15वें अध्याय में ऋचिक मुनि, जमदग्नि ऋषि और परशुराम जी, ये तीनों का चरित्र इस अध्याय के अंदर बताया गया है। खास करके पिछले वाले श्लोक नंबर 24 से श्लोक का लिंक है कि जब जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि ने सैनिकों मंत्रियों एवं पालकी वाहनों के समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया तो उन्होंने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। देखिए कार्तवीर्य अर्जुन जिनको इस प्रकार के अपने अभ्यागत स्वागत करने के पश्चात मुनि से प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जब आदमी के अंदर पास अगर किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल हो जाता है या पद मिल जाता है तो वह व्यक्ति भगवान तक को भी ठुकराने का प्रयास करता है, क्योंकि यह आसुरी प्रवृत्ति है। और आचार्यों ने कहा है कि कुर्सी में दोष है, पद में दोष है, किसी भी प्रकार की जस में भी दोष है, अगर किसी को ज्यादा यश मिलने लगता है, आदर मिलने लगता है, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं। ये तो राजा थे, कार्तिकेय वीर अर्जुन ये राजा थे। इससे पिछले वाले श्लोक में भी इन्होंने अपना वीरता दिखाई है। जब ये अपने संगिनियों के साथ नदी में विहार कर रहे थे, तो कौतूहल बस इन्होंने अपने भुजाओं से, इतने प्रतापी राजा थे कार्तिकेय वीर अर्जुन के, अपने भुजाओं से नदी के धारा को ही रोक दिया और उस नदी के तट पर नजदीक में ही, जहां ये जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसके पास में ही रावण का भी शिविर लगा हुआ था। अब नदी की धारा मुड़ने के कारण रावण का शिविर डूबने लगा, तो रावण भी अहंकारियों में कम नहीं था। उसने भी इस प्रकार के किए हुए कारतूत से बाज नहीं आया, वहां आया और कार्तिकेय अर्जुन को बहुत अपशब्द बोला। लेकिन कार्तिकेय अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाते हुए एक बंदर की तरह उन्हें बंदी बना करके महिष्मति नामक नगर में ले आकर के उन्हें जेल में डाल दिया। भागवत में आया है कि रावण के पिता के कहने के बाद तब कार्तिकेय अर्जुन ने उनको छोड़ा। रावण के पिता का नाम क्या था? है जोर से बोलिए। इनके कहने से कार्तिकेय ने उनको छोड़ा। अब हम लोग इस श्लोक से पिछले वाले श्लोक पर आते हैं कि जो तपोधन शब्द आया है जमदग्नि ऋषि के लिए आया है, क्योंकि जो भजन में एकनिष्ठ व्यक्ति होते हैं और जो भजन में बहुत अग्रसर होते हैं, भगवान ने कृपा करके उनको सारी विधि सिद्धियां जो कुछ भी है सब कुछ अपने आप प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक कि भगवान जब अपने आप तक को भक्तों को दे देते हैं, तो अन्य प्रकार की कोई त्रुटिजनक कह लीजिए या इस संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में उसे किस प्रकार की अप्राप्ति की असुविधा होगी। अर्थात जमदग्नि जी के पास सारी सिद्धियां थी, सब कुछ प्राप्त था, लेकिन इसके पीछे एक ही कारण था कि कामधेनु नामक गाय उनके आश्रम में थे, जिसके बल पे जमदग्नि मुनि ने औतिथ्य मतलब राजा के हाय हाय वंशियों सहित, अर्थात राजा के सिपाहियों सहित जितने भी सैनिक थे, मंत्री थे, उनके सहित सबका उचित रूप में उन्होंने स्वागत किया। लेकिन ज्यादा स्वागत करने के बावजूद भी जो नीच व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। क्योंकि ऐश्वर्यमय व्यक्ति है, उसके पास सारी सुख सुविधा है, क्योंकि पहले से ही वो अपने इस प्रकार के हरकतें दिखा चुका है अपने जीवन चरित्र से, तो अपने आदतों से वो बाज नहीं आया। प्रभुपाद जी से पिछले वाले श्लोकों के दो लाइन के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कार्तिकेय अर्जुन जो थे जमदग्नि मुनि के आश्रम पर, उनका जाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक चुनौती देने के उद्देश्य से उन्होंने उस आश्रम पर गए और कामधेनु को जबरदस्ती उन्होंने बिना मुनि से पूछे आदेश लिए हुए वो जबरदस्ती उसको लेकर के चल दिए। यह चुनौती थी और इसी पर पिछले वाले श्लोक में आया है कि यही कारण था कि परशुराम जी को अतिशय क्रोध आया और उन्होंने जदुवंशियों का विनाश किया। श्लोक नंबर 14 के अंदर कहा गया है कि यमाहु वासुदेवान सम है यानाम कुलांतकम त्रिसप्त कृत्यो ज इमे चेन निक्षत्रिय महिम। पृथ्वी को त्रिसप्त मतलब 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन महिम को अर्थात पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। श्लोक नंबर 16 में भी इस बात का संकेत किया गया कि इसका मूल कारण यही था। श्री श्री राधा राधिका रमण जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्लोक नंबर 16 में भी और 15 के भी दोनों के अनुवाद में यह संकेत किया गया है कि जो पृथ्वी है वह दो तीन ऐसे कारण होते हैं जिनसे वो भार युक्त हो जाती है। एक तो राजा रजोगुणी बन गए थे, तामसिक गुण वाले हो गए थे और किसी के प्रति उनकी कोई आदर भावना नहीं थी और अब्राह्मण पूजक बन गए थे, मतलब ब्राह्मण के प्रति कोई उनका आदर नहीं था। इस अपराध के कारण है वंशियों का विनाश करने के लिए परशुराम जी मतलब इस वंश में आए। पिछले वाले श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि क्या कारण है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों को इस प्रकार का विनष्टीकरण किया, तो इसका मूल कारण यही था। भागवत के दशम स्कंद में भी अगर प्रवेश करेंगे तो शुरू के अध्याय में ही यह बात आएगी कि माँ पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और बछड़े सहित ब्रह्मा जी को लेकर के और अन्य देवताओं को लेकर के भगवान के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गई कि भगवान आप जल्दी ही अवतरित होइए, क्योंकि आपके अनुपस्थिति में अत्याचारियों ने इस पृथ्वी माँ का भार ज्यादा बढ़ा दिया है। वास्तविक स्थिति यही है। आज इस कलिकाल में जो घोर पापन अनुवृत्तियां जो बढ़ रही हैं कि ब्राह्मण और गायों का अपमान किया जा रहा है, विशेष करके गायों की स्थिति देख करके तो अतिशय रोमांचित हृदय के अंदर हो जाता है कि क्या किया जाए इनके लिए। गाय के शरीर के अंदर ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो वास नहीं करते, लेकिन उनका कितना अनादर किया जा रहा है। प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि जो मांस भक्षण करने वाले हैं अगर वो मांस खाए बिना अगर नहीं रह सकते तो कुकर सुअर और बकरे इत्यादि का मांस खा सकते हैं, लेकिन गाय के पास तक ना फुड़के, गाय के खाने के प्रति अपनी भावना भी न जाहिर करें, इच्छा न करें, क्योंकि गाय इतनी पवित्र है। और आप देख रहे हैं कि जमदग्नि की जो ऐश्वर्य शक्ति जो बढ़ी हुई है केवल एक गाय के कारण इतना उन्होंने स्वागत किया राजा का कि राजा के मन में उस आतिथ्य को स्वीकार करने के बाद खुशी न हो करके ईर्ष्या उनके मन में भाग जाग उठी कि इतना ऐश्वर्य तो हमारे पास होना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूं। यह वास्तव में ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय का भाव इंगित होता है कि किसी की उन्नति को देख करके, किसी भी व्यक्ति को बढ़ोतरी को देख करके उसकी टांग खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको बल्कि उत्साह देना चाहिए कि वो आगे बढ़े। लेकिन यह संसार की प्रवृत्ति है कि कोई भक्त अगर आगे बढ़ गया तो भी दिक्कत, कुछ नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत, क्योंकि किसी भी तरह से इस संसार के लोग जो संसार के मतलब अंदर ही प्रविष्ट करना चाहते हैं, वो किसी को अच्छे तरह से जीना नहीं देना चाहते। इस श्लोक के अंदर है शब्द आ जाए कि तत्र न आद्रियते, कि जब जमदग्नि मुनि ने इतना अभ्यागत स्वागत किया राजा और राजा के सिपाहियों का, तो उनको आदर देना चाहिए, खुश होना चाहिए कि वाह मुनि ने हमारा क्या स्वागत किया। लेकिन स्वागत से खुश न होकर के उनके मन में ईर्ष्या भाव जगा, तभी तो उन्होंने ब्राह्मण को बिना कुछ पूछे हुए, ब्राह्मण से कुछ बिना आदेश लिए हुए ही उन्होंने उस गाय को ले चले कि हमारे राजधानी में इस प्रकार की गाय होनी चाहिए। किसके ऊपर वास्तव में अगर सोचा जाए तो जो ऋषिक मुनि हैं, जमदग्नि ऋषि हैं, परशुराम जी हैं, अगर किसी के व्यक्तित्व पर अगर गहराई से विचार किया जाए तो दोष बुद्धि तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर दोषी होते तो दोषी व्यक्ति की कथा भागवत के अंदर नहीं दी जाती, क्योंकि यह अमल पुराण है, इसके अंदर गलत व्यक्ति की कथा नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह भगवान साक्षात कृष्ण एव ही भागवत के लिए कहा गया है कि साक्षात कृष्ण ही भागवत के रूप में है। लेकिन इसके पीछे कुछ लीलाएं होगी जिस कारण से इनकी कथा है, लेकिन इससे भावार्थ प्रकट होता है कि तथाकथित साधु समाज में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति में अगर वो आनंदित होकर के अपने ढंग से वो चल रहा है आनंद लेते हुए, तो कितने लोग टीका टिप्पणी करते हैं, यह स्वभाव है, लोगों की यह भावना होती है कि मैं जैसे कहूं वैसे ही चले, लेकिन ऐसा भक्ति में नहीं होता। आचार्य के अनुगत में अगर होकर के वह नहीं चल रहा है तो दोषी है, लेकिन आनंद ले रहा है भक्ति में, आचार्यों के मतलब संप्रदाय से ही जुड़ करके आनंद ले रहा है, तो कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। तत्र न आद्रियते, स्वागत नहीं कि मतलब हर्षित नहीं हुआ राजा। स अभिलाष सहय राजा, मतलब अपने अनुगामिनी अपने अनुयायियों सहित भी वो खुश नहीं हुए राजा के, अरे ऋषि के व्यवहार से। राजा जो कार्तिकेय अर्जुन थे वो खुश नहीं हुए, इसके पीछे केवल एक ही कारण था कि उनके अंदर उस कामधेनु के प्रति उनकी अभिलाषा हो चुकी थी कि ये गाय हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि ये धन देने वाली गाय है, सारी प्रकार की इच्छाओं को देने वाली है। अगर इनसे पिछले वाले श्लोकों में पढ़ेंगे तो बताया गया है कि राजाओं के अंदर कितने अवगुण होते हैं, कितने विषयी होते हैं, जिसके लिए अपने विषयों की तृप्ति के लिए ऋषियों का भी अनादर कर देते हैं, वही बात हुई है। अन्यतात् प्रकाशिका टीका में श्लोक का टीका किया गया है कि सह इति तत्र सह सहय हय हय हयानाम स्वकुलई स वर्तमान अग्निहोत्रायाम धनौ स अभिलाष वीरा वीर अर्जुन तत्र मुनि आश्रमे आत्मना अश्चवर्य अन्य आदि अतिशायनम अतिशय युक्तम तद कामम धनवा तम कामम धेनवा रत्न आदि रत्न पादिकम अश्चवर्यम दृष्ट्वा तन मुनि आतिथ्यम न आद्रियत। क्योंकि अतिशय युक्तम तद कामधनवा, जो रत्न दे रही थी गाय कामधेनु, उसकी इस प्रकार की देने की प्रवृत्ति को देख करके राजा के मन में लोभ उत्पन्न हुआ कि हमें इस गाय को ले जाना चाहिए। वास्तव में हर व्यक्ति को जो भक्ति पथ पर चल रहा है या जो भक्ति पथ से नहीं जुड़ा है, उसका यही स्वभाव होना चाहिए कि किसी के भी किसी भी प्रकार की वस्तु को देख करके यह लोभ अपने अंदर पैदा न होने दे कि यह वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, यह मेरा होनी चाहिए। यह अपने आप में भी यह वैमनस की प्रतीति है। अरे किसी के भाग्य रेखा में या किसी के कर्तव्य अनुसार किसी को फलश्रुति मिली हुई है कि किसी को आदर मिल रहा है, किसी को धन मिल रहा है, किसी को प्रतिष्ठा मिल रही है, किसी को प्रशंसा मिल रही है, तुम उस चीज को देख करके क्यों कूड़ रहे हो? तुम भक्ति का आनंद लो ना, भगवान से जुड़ करके भगवत प्राप्ति का आनंद लो। वास्तव में इस कथा से एक तथ्य मूल रूप से यही निकलता है कि किसी की भी उन्नति को देख करके अपने अंदर मतलब ईर्ष्या वाली भावना उत्पन्न न होने दें। जमदग्नि जी उस योग्यता को प्राप्त किए थे, भगवत प्रदत्त कामधेनु उनको मिली हुई थी, उस चीज को प्राप्त होने के बाद हम क्यों या राजा वाले भाव में आए कि नहीं इस प्रकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अब इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हम लोग प्रभुपाद जी के शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें। अनुवाद को पढ़ रहा हूं, थोड़ा एक बार आप लोग और ध्यान से सुनिएगा कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से। कार्तवीर्य अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, हमारे पास कुछ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के पास क्यों हो गया, इसको देख करके ज्यादा हमें दुख की महसूसी होती है, यही हमारे मुख्य पतन का कारण होता है। क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है, अतः उसने तथा उसके हाय हाय जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की। न आदरते शब्द का अर्थ है कि वो प्रशंसनीय अर्थात खुश नहीं हुए उनके आदर से, उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। गाय का एक नाम है हाविरधानी। हाविरधानी शब्द से संकेत होता है कि सभी प्रकार के हविष्य पदार्थ को गाय प्रदान करने वाली होती है। यज्ञ में जितने भी शुद्धिकरण के लिए जो शुद्ध चीज की जरूरत होती है वो गाय दे सकती है, इसलिए उसका एक नाम हविष्य धानी भी है। गाय के दूध से चरणामृत बनता है, गाय के दूध से घी बनता है, और गाय के दूध से जमी हुई दही भी शुद्ध माना जाता है। जितने भी शुभ काम हैं गाय के दूध से अमृत तुल्य प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग तो गाय गांव में हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोग तो देखते हैं कि जैसे सत्यनारायण भगवान वगैरह की कथा वगैरह लोग कराते हैं तो ढूंढते हैं कि गाय का दूध किसके पास, क्योंकि चरणामृत बनाना है, इतना पवित्र माना जाता है। आज उसी गाय उसी माँ की क्या हालत हो रही है, हर हिंदुओं को क्या हर मनुष्यों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस गाय की दुखद स्थिति को देख करके जिसके अंदर दर्द पैदा नहीं होती, जिसके अंदर दया नहीं पैदा होती, वह इंसान नहीं है। इतनी दुर्दशा स्थिति में हम देखते हुए भी जी रहे हैं, क्योंकि गायों की स्थिति इतनी दुर्दनीय है उससे करोड़ों गुना बेटर कुत्ते हैं आज की स्थिति में, जिनको कितना लोग गोद में लेकर के घुमाते हैं, बेड पर सुलाते हैं, दूध तक पिलाते हैं। आप सोचिए कि कितनी हम लोगों की स्थिति मनुष्य के स्तर नीचे गिर चुकी है। जो आदर गाय को देनी चाहिए, जो गोवंश को जितनी आदर देनी चाहिए, उनका आदर न दे करके हम कहाँ पहुँच गए। और हम लोग कहते हैं मॉडर्न है, हम लोग बहुत विकास कर गए, ये हो गए वो हो गए। अरे तुम विकास नहीं कर गए, तुम विनाश कर गए। मनुष्य अपना सब कुछ खो रहा है। प्रभुपाद जी बहुत लिखते हैं, कई जगह गायों के विषय में लिखते हैं कि गाय की तुलना माँ से की गई है, कि माँ जैसे अपने स्तन से अपने बच्चे का पालन करती है, वैसे ही गाय माँ अपने बछड़े का तो पालन करती ही है, साथ साथ में कितने और बच्चों का पालन करती है। इसलिए गाय के प्रति अधिक ही सहानुभूति होनी चाहिए किसी को। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के अंदर कृषि गो रक्षा वाणिज्य वर्णन भी किए हैं, बताए भी हैं, उसके भी तात्पर्य हैं। प्रभुपाद जी ने गाय के विषय में कुछ संकेत किए हैं कि गाय के प्रति कितनी सहानुभूति होनी चाहिए। अब तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि जमदग्नि कार्तिकेय या अर्जुन की उपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। वर्णन आया है कि घी से बनी हुई पदार्थों से ही जमदग्नि जी ने कार्तिकेय अर्जुन का स्वागत किए, खिलाए पिलाए। आजकल तो घी का नाम ही सुनना है कि घी है, और लिख दिया जाता है शुद्ध देसी घी। जिस पर अगर लिख दिया गया कि शुद्ध देसी घी, निश्चित रूप से समझिए कि डुप्लीकेट है, गलत है, मिलावट है उसके अंदर। चारों तरफ गायों को काटा जा रहा है और शुद्ध देसी घी पर्याप्त मात्रा में दूध और दही मिल रहा है, इसका क्या कारण है? केवल मिलावट है। हम लोग गए थे एक बार बुलंदशहर, चार पांच लोग हम लोग गए थे प्रोग्राम करने के लिए। जिसके यहाँ प्रोग्राम था उसके यहाँ ही डुप्लीकेट दूध बनता था, हम लोग गए थे देखने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो पेंट है ना, पेंट जो किया जाता है सफेद, वो भी उसके अंदर मिलाया जाता है। आप सोचिए कि मनुष्य अगर वो खाएगा और पिएगा वो दूध, शायद उसका वो बंद हो गया, लेकिन वो मिलाया जाता था। और प्योर काऊ मिल्क लिखा जाता था प्लास्टिक पर। भगवान हम लोगों की रक्षा करे, साधु समाज की या सारे मनुष्यों की, कि ऐसे वातावरण में भी हम भगवत स्मृति करते हुए हम अपने कार्यक्रम को जारी रखें। यह प्रार्थना से ही मतलब पूर्ति हो सकती है। ऐसी गाय हर किसी के पास होनी संभव नहीं है, क्योंकि उस गाय के पात्र होना चाहिए, मतलब उसके पालन करने लायक होना चाहिए। आप सोचिए कि हमारे ठाकुर को गोपाल कहा जाता है, आराध्य देव को गोपाल कहा जाता है, मतलब वृंदावन महात्म्य के एक श्लोक में बताया भी गया है कि भगवान का मुख्य काम ही है गाय और गोपियों का पालन करना। क्योंकि कृष्ण का मुख्य काम है गोपालन करना। भगवान जब गायों का पालन करते हैं तो हमारे जैसे कीड़े मकोड़े गायों को अगर अनादर कर रहे हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी? जितना प्रेम भगवान गाय से करते हैं उतना ही प्रेम राधा रानी से करते हैं। आप देखे होंगे ऐसा पिक्चर, एक तरफ भगवान गाय को आलिंगन किए हैं और एक तरफ राधा रानी के कंधे पर हाथ रखे। उस चित्र का अर्थ ही है कि भगवान जितना राधा रानी से प्रेम करते हैं उतना प्रेम गाय से करते हैं। तो भी एक समान व्यक्ति एक समान गाय रखकर उसकी रक्षा करते हुए उससे प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है। भागवत के दशम स्कंद के अंदर गोचारण लीला के अंदर कई बार ऐसा शब्द आया है कि गोवंश जहां सुखी है वहां किसी भी प्रकार की दुखद स्थिति नहीं आ सकती है। भागवत का दशम स्कंद गोचारण लीला कोई खोल करके पढ़ सकता है कि अगर कोई अगर सुखी रहना चाहता है तो जिनके पास गोवंश नहीं है गाय नहीं है गाय रख करके देखे और उसको सुख देने की सारी सुविधा रखे तो उसको खुद ही आत्म अनुभूति होगी कि हम सब प्रकार से सुखी हैं। ब्रज में आज भी बहुत से लोग सुख का आनंद मतलब बहुत सुख ले रहे हैं आनंद ले रहे हैं। आज की स्थिति में भी ब्रज के अंदर बहुत गायों की सेवा की जाती है। हम लोग ब्रज के गांव गांव में भी घूम करके दो चार जगह देखे हैं इतना लोग गायों की सेवा करते हैं कि उनके पास बहुत कम खेत है फिर भी आनंद के साथ जीते हैं। प्रभुपाद जी भी इस पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में और यहाँ भी लिखे हैं कि मनुष्य गाय को रख करके सुख की प्राप्ति कर सकता है। आप देखिए ना 33 करोड़ देवी देवता आप लोग बताते हैं कहाँ कहाँ लोग क्या क्या मांगने के लिए जाते हैं लोग कि हमें ये दे दो हमें ये दे दो हमें ये दे दो। जो सारे देवता उस गोवंश के अंदर वास करते हैं तो जो गाय को आदर देता है जो गाय का पूजक बनता है जो गाय का सेवक बनता है वो सारे देवताओं का सेवक हो जाता है। उसे किस चीज की कमी हो किसी भी वस्तु की कमी महसूस नहीं होगी अगर गाय का सेवा करे तो। इस तरह हम देखते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण गोरक्ष अर्थात गोरक्षा का उपदेश देते हैं। यह अत्यावश्यक है क्योंकि यदि गायों की ठीक से देखभाल की जाए तो उनसे प्रचुर दूध मिल सकता है। हमें अमेरिका में इसका व्यवहारिक अनुभव हुआ है जहाँ हम इस्कान के विविध फार्मों में गायों को ठीक से सुरक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहे हैं। अन्य फार्मों की गायें उतना दूध नहीं देती जितने की हमारी गायें देती हैं क्योंकि हमारी गायें जानती हैं कि हम उनका वध नहीं करेंगे अतः वे सुखी हैं और पर्याप्त दूध देती हैं। हम लोग देखे हैं गाँव के अंदर कितने चरवाहे लोग कसाईयों को गाय वगैरह बेच देते हैं तो जब कसाई लोग उस गाय या भैंस को जब ले करके जाते हैं तो हमने अपने आँख से देखा है कि उन भैंस कह लीजिए या गाय कह लीजिए उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित होते हुए मैंने देखा है क्योंकि उनके अंदर पहचानने की शक्ति होती है कि ये कहाँ ले जा रहा है मुझे। क्योंकि कोई भी पशु में पहचानने की शक्ति होती है क्योंकि चरवाहे लोग किसी भी गाय का कोई नाम रख करके और बुला देते हैं तो गाय आ जाती है किसी भी भैंस का कोई अमुक नाम रख करके पुकारते हैं तो वो आ जाती है। इसका मतलब वो समझती है तो मुझे बुला रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही संकेत कर रहे हैं कि हमारी गाय इसलिए ज्यादा दूध देती हैं हमारे फार्म की क्यों जानते हैं पहचान रहे हैं कि यह हमें काटेगा नहीं यह हमारी हत्या नहीं करेगा। क्योंकि हमारी गायें जानते हैं कि हम उनका वध नहीं करेंगे अतः वे सुखी हैं और पर्याप्त दूध देती हैं। अतः कृष्ण जी द्वारा दिया गया गोरक्ष का उपदेश अत्यंत सार्थक है। सारे विश्व को कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार मात्र अन्न उत्पादन करके अन्नादि भवन्ति भूतानि तथा गायों को सुरक्षा प्रदान करके गोरक्ष लोग बिना किसी अभाव के सुख पूर्वक रह सकते हैं। यह ब्रजवासियों की उक्ति है। उन्होंने दशम स्कंद में कहा है कि गोधन ही हमारा वास्तविक धन है, हमारे जीव को उपार्जन का मुख्य साधन गोधन है। इसीलिए भगवान उन ब्रजवासियों के घर जूठा खाए हैं, उन ब्रजवासियों के साथ खेले हैं, कूदे हैं, उस ब्रज के अंदर लोटे हैं। को कवि वर्णन कर सके ब्रज के रज के मूल, जाके कड़कड़ में बसे जुगल चरण की धूल। साधारण भूमि नहीं है, वो साधारण लोग नहीं है जिनके साथ भगवान ने लीला किया, क्योंकि हम जब उन सब लीलाओं को पढ़ करके अनुभूति करते हैं, आचार्यों से कुछ उनके विषय में चर्चा करते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, ब्रज का महात्म क्या है, ब्रजवासियों के महात्म क्या है, वहाँ के वृक्षों के महात्म क्या है, वहाँ के भूमि के महात्म क्या है। ब्रह्मा जी अपना उद्गार देते हैं कि मुझे ब्रह्मा का शरीर छोड़ना पड़े तो मुझे यहीं ब्रज के अंदर ही कोई भी शरीर देना हमें मंजूर है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, मानव समाज के तृतीय श्रेणी के लोगों अर्थात व्यापारी वर्ग को अनुत्पादन तथा गायों की रक्षा के लिए भूमि अवश्य रखनी चाहिए। यह भगवत गीता का आदेश है। गायों की सुरक्षा के प्रश्न पर मांसाहारियों को आपत्ति होगी, अतः इसके जवाब में हमें उनसे कहना चाहिए कि चूंकि कृष्ण गोरक्षा पर बल देते हैं, अतः जो मांस खाना ही चाहते हैं वे कुकरों सुकरों भेड़ बकरियों का मांस खाएं, किंतु वे गायों के जीवन पर आंच नहीं आने दें, क्योंकि यह मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति को विनष्ट करने वाला है। जहां गाय दुखित हैं वहां हमारे भारतवासी दुखी होंगे ही होंगे। जितने भी उथल पुथल हो रही हैं देश के अंदर, इसका दुर्गति का मुख्य कारण ही है गो का विनष्टीकरण, गो वंश का विनष्टीकरण। भागवत में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे होली में कीचड़ और रंग वगैरह उड़ा करके लोग गंदा करते हैं कपड़े वगैरह दुनिया जहान, वैसे ब्रज के अंदर दही दूध घी माखन से होली खेला जाता था, इतना पर्याप्त मात्रा में होता था। आज शुद्ध चीज देखने को नहीं मिल रहा। इसका मुख्य कारण यही है कि जो गो वंश का विनष्टीकरण हो रहा है, यही हमारे औन्नति का मुख्य कारण है। देखिए कथा को प्रभुपाद एक साइड करते हुए गोवंश पर ज्यादा संकेत कर रहे हैं, क्योंकि जो साधु वाद हृदय वाले होते हैं, जो साधु हृदय वाले होते हैं, उनके लिए सबसे आदरणीय गाय है। हमारे आराध्य देव को जब गाय इतनी आदरणीय है, इतनी पूजनीय है, तो हम लोगों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए इन कथाओं से। आजकल के लोग तो गाय का गोबर भी उठाने में पता नहीं हाथ भी नहीं लगाना चाहते, कि गाय के शरीर से ऐसा कुछ भी पदार्थ नहीं निकलता जिसको स्पर्श करें हम तो अपवित्र हो जाए। सारे पवित्र चीजें हैं उनके, और मनुष्य का शरीर तो किसी काम का नहीं है, फिर भी हम इससे कोई इसके ऊपर कितनी अहंकार रखते हैं, और इसी को सजाने में, इसी को संवारने में हमारे जीवन का 75% जो अवधि है, उम्र है, वो निकल जाता है, फिर भी ये साफ नहीं होता। इसलिए जो हमारे पास समय है उसके लिए सदुपयोगिता इस यही है कि हम भागवत को पढ़ते हुए और यह सहानुभूति अपने हृदय के अंदर उत्पन्न करें कि हमें क्या करनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ भागवत यह भी आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत ज्ञान देता है कि हमें किसी जीव के प्रति तो सहानुभूति दिखानी ही है कि नहीं उसकी हत्या करनी है, लेकिन गाय का विशिष्ट स्थान देना है। गाय की यह शक्ति है, गाय की यह कृपा है कि एक राजा को भी लोभ हो गया, पूरे पृथ्वी के राज प्राप्त करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, एक गाय को भी जबरदस्ती ले जा रहा है। इसलिए अगर प्रचुर मात्रा में अगर हम भक्ति करना चाहते हैं या अपनी मानसिकता को एक जगह अच्छी तरह से हम टिकाए रखना चाहते हैं तो किसी भी जीव के प्रति और विशेषतः गाय के प्रति तो सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर हम गो सेवा की प्रवृत्ति अपने हृदय के अंदर हम विकसित करेंगे तो अपने आप गोपाल प्रसन्न होंगे। हम लोग जितना फल फूल दुनिया जहान चढ़ाते रहते हैं, भगवान को प्रणाम करते रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान खुश होंगे एक गाय की सेवा करने से। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान की सेवा छोड़ करके उधर ही हो जाए, लेकिन करना जरूरी है। भगवान ने सिखाया अपने व्यवहार से, अपने लीला से, स्वयं चरवाहे बनते हैं, स्वयं गोपाल बनते हैं, सब कुछ करते हैं। स्वयं भगवान गो के स्तनों में अपना मुख डाल करके एक साल तक दूध पिए, एक साल तक खुद गाय और बछड़े बने, क्योंकि इन सब कथाओं से यह सांकेतिक आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है कि हम इस तथ्य पर जरूर अपने दिमाग को लगाएं कि हमें भगवत सेवा संबंधी जो गाय हैं या जो और अन्य पशु हैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अत्यधिक भाव हमारा गाय के प्रति होना चाहिए। गाय की महिमा का वर्णन ब्रह्मवैत पुराण से यहाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कि गवाम अधिष्ठात्री देवी गवा माद्या गवा प्रसु गवाम प्रधाना सूरभि गोले के गोलो के सा समुद्र भवा। कई श्लोक उद्धृत के पृष्ठे ब्रह्म गले विष्णु मुख रुद्रे प्रतिष्ठित मध्य देवगढ़ा सर्वे रोम कूपे महर्षय नागा पूछे सुराग्रेशु यह चौष्टम कुलपर्वत मूत्रे गंगा दयो नद्यो नेत्रयो शशि भास्करो। गो माता के पृष्ठ में ब्रह्मा, गला देश में विष्णु, मुख में रुद्र का स्थान है, बीच के अवयवों में समस्त देवता और रोम कूपों में महर्षि गण बसते हैं, पूछ में अनंत नाग, खुरों में कुलपर्वत और मूत्र में गंगा आदि नदियां वास करती हैं, नेत्रों में चंद्र और सूर्य बसते हैं। इतनी महिमा है गायों की, कौन बाकी रह गए इसके अंदर? सब के सब आ गए गाय के शरीर के अंदर। इतनी महिमा सुनने के बाद भी अगर हम लोगों को गायों के प्रति कुछ भाव न उत्पन्न होए तो हमारा हृदय ये समझ लीजिए कि वज्र का बना हुआ है। गाय का जो मूत्र है वो गंगा नदी के समान पवित्र है, यहां तक बताया गया है इस श्लोक के अंदर। इतनी महिमा सुनने के बावजूद भी हम उस गाय के प्रति किसी भी प्रकार की भाव अपने अंदर न लाए तो हमारी मनुष्यता के विरोध आचरण है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो एक आध लिया जा सकता है, आप लोग पूछ सकते हैं।